نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. سورة یوسف کی آیت نمبر 39 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں انسانوں سے, اور وہ کیا کیا بہت سارے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. یہ ہے وہ سوال جو ہم سب کے اس موضوع پہ بات کرنے کی دلیل بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہنوں کو بیدار کیا یہ کہہ کر کہ کیا تمہیں ایک خدا چاہیے یا زیادہ چاہیے. آج جو کتاب ہم شروع کرنے والے ہیں اس کا نام ہے توحید کے مسائل, کتاب التوحید. توحید کیا ہوتا ہے اس لفظ کو سمجھ لیتے ہیں. توحید کا مادہ واو ہا اور دال ہے, یعنی روٹ کیا ہے واو ہا دال. اسی سے لفظ واحد بنتا ہے, اسی سے لفظ احد بنتا ہے, اور اسی سے وحدت کا لفظ ہے, وحید کا لفظ اسی سے ہے. وحید یا وحد اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنی ذات اور اپنی صفات میں اکیلی اور بے مثال ہو, اور یہی ہے وہ لفظ جس کا تذکرہ سورۃ الاخلاص میں قل ھو اللہ احد اللہ الصمد میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے, اکیلی ہے, نہ کوئی اس جیسا ہے اور نہ وہ کسی جیسا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے قل ھو اللہ احد کا ترجمہ بھی بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ھو اللہ احد, کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے, لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفواً احد, اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. ایک موقع پہ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جس ذات کی تم پوجا کرتے ہو تمہارا جو خدا ہے وہ کس چیز سے بنا, کیونکہ ان کے بت یا تو مٹی اور پتھر اور چونے کے بنتے تھے, کوئی نہ کوئی مادی چیز ہوتی تھی جس کو سامنے رکھ کے پوچھتے تھے. تو ان کا خیال تھا کہ اللہ کے نبی بھی ایسے خدا کی پوجا کر رہے ہیں, تو کہا اس کا حسب کیا ہے, وہ کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, کس نے اس سے وراثت پائی, اس کا وارث کون ہوگا. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی تھی کہ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد. تو سوال کا جواب کیا ہے کہ اللہ کی ذات اس جیسی کوئی ذات نہیں. ہم جس دین اسلام کی بات کرتے ہیں اس میں بہت سارے اعمال کرنے کی ہمیں اعمال کرنے کا حکم دیا گیا. اس وقت ہم دین کے بارے میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں خلط ملط ہیں. دین کہاں سے شروع ہوتا ہے, کہاں سے ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے اس سلسلے میں اس چیز کو ملحوظ رکھیں گے جس کی کڑی اس وقت کتاب التوحید کو پڑھنا ہے. ہم میں سے ہر ایک نجات چاہتا ہے نا, قیامت کے دن اللہ کی رضا سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے. یہاں ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ جنت میں جانے کی دو بڑی بنیادیں, ان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا, جس میں پہلی چیز ایمان ہے اور دوسری چیز عمل صالح. ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان لانا. کیسا ایمان؟ جیسا وہ ہے, جو اس کو لائق ہے, اس کے ناموں, اس کی صفات کو اسی طرح محسوس کرنا جیسے کہ وہ ہوگا, جو وہ ذات ہے اس کو ویسی ماننا. بس اگر ہم کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں मगर क्या ईमान लाते हैं कि ये फलां स्टैचू जो है ये अल्लाह ताला की ज़ात को रिप्रेजेंट करता है, या सूरज जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात का एक प्रेजेंटेटिव है, तो हमने अल्लाह को नहीं माना। ये ऐसी है जैसे कोई अपनी माँ को कहे कि मैं आपको मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि आप क्या मानती हैं कि मेरी अम्मी है। माँ को आप माँ मानेंगे तो माँ होगी ना। कोई बीवी अपने शोहर से कहे कि मैं आपको मानती हूँ, क्या शोहर मानेगी ना। भाई को आप भाई मानेंगे। तो दुनिया में जैसे इंसानों की मुख्तलिफ चीज़ें एक चीज़ हमें माननी होती हैं, उनको मुख्तलिफ अंदाज से देखना होता है, इसी तरह अल्लाह की ज़ात को उसकी असल जगह पर रखना, ये है वो बुनियादी हमसे डिमांड कह लें, रिक्वायरमेंट कह लें, मुतालबा कि हम अल्लाह को एक माने। जिस तौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए थे, तो अमूमन बिगाड़ तीन तरह से हो चुका था। वो बिगाड़ क्या था? एक फिरका जो आपके बिल्कुल करीब था वो मुशरिकीन मक्का था का था। उनका मामला क्या था कि वो कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियाँ। कभी आपने ये बात सुनी? इसका जिक्र कुरान पाक में सूरत अलानाम की आयत 100 में है, 100। आप सिर्फ नंबर नोट करें और बाद में आप उसका तर्जमा ख़ुद भी लिखेंगे कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजा अलू लिल्लाहि शुरका अल जिन्ना व खलकहुम व खरकु लहू बनीना व बनातिन बगैर इल्मिन सुभानहू व तआला अम्मा यसिफून। लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक बना रखा है, हालांकि अल्लाह ताला ने तो जिन्नों को पैदा किया है। इसी तरह बास लोगों ने बेजाने बूझे अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां बना रखी हैं, हालांकि अल्लाह ताला पाक और बालातर है इन बातों से जो ये करते हैं। इसी तरह दूसरा जो गलत नज़रिया अल्लाह की ज़ात के बारे में था, वो उस दौर के नसारा का था। नसारा क्या है? जिनको आज के दौर में हम क्रिश्चियन कहते हैं। वो क्या कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और इसी तरह तीसरा गिरोह यहूद का था, वो कहते थे कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। इन दोनों के इस नज़रिए का जिक्र सूरत तौबा की आयत 30 में आता है, वक़ालतिल यहूद उज़ैरुन इब्नुल्लाह। यहूद ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। वक़ालतिन नसारुल मसीह इब्नुल्लाह, और नसारा ने कहा कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं। ज़ालिका कौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये तो इनके मुँहों की बातें हैं, यानी जो दिल चाहता है ये उसको करने लगते हैं। युज़ाहिऊना क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल, ये तो अपने से पहले काफिरों की मुमासलत करते हैं, यानी उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको कॉपी कर रहे हैं। क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़क़ून, इन पर अल्लाह की मार, ये कहाँ से धोखा खाए जाते हैं। ऐसे तीन बातिल नज़रियात के बीच में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना के भेजा, और चारों तरफ लोग शिर्क में मुब्तला हो चुके थे। हम सब के लिए ये बात बहुत दिलचस्पी की होनी चाहिए कि जब दुनिया बनी, सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में सब लोग अल्लाह को एक मानते थे, उसकी वाहदानियत के, उसके वाहिद होने के पैरोकार थे, इस नज़रिए को मानते थे। उसके बाद फिर कुछ दौर ऐसा गुज़रा कि जिसमें कुछ नेक लोग थे, वो यके व दीगरे दुनिया में रहे तो बहुत नेक थे, अच्छे काम करते थे। जब उनकी वफ़ात का वक्त आया तो शैतान लोगों के पास आया, कहने लगा कि देखो कल तक तुम बुरे काम करते थे, इसके बावजूद तुम क्यों बचते थे अल्लाह के अजाबों से? क्योंकि तुम्हारे बीच में फलां 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 नेक लोग रहते थे। आज भी ये सोच है, बस लोग नेक लोगों से सिर्फ इसलिए भी सलाम दुआ रखते हैं कि ज़रा मुश्किल कोई पड़ी तो इनसे दुआ करा लेंगे, इनकी मौजूदगी, इनको खाना खिला दो ताकि हमारे घर में बरकत हो जाए, अच्छा इनकी दुआ ले लो ताकि इनकी दुआ से हमारी बीमारियाँ दूर हो जाएँ। ये हर दौर में लोगों का ख्याल रहा कि इंसानों से फ़ायदा उठाना। अब इसको जब आप बढ़ाते जाते हैं ना, तो यही चीज़ शिर्क में आ जाती है। अगर हम साथ ही साथ देखते जाएं कि अल्लाह ताला की ज़ात को एक मानने के जो मुख्तलिफ दर्जे हैं वो कौन से हैं, क्योंकि अब जब हम कहते हैं ना अल्लाह एक है, तो हम कहेंगे हम सभी मानते हैं अल्लाह एक है, यानी जितने लोग इस हॉल में मौजूद हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपका क्या ख्याल है कि क्या आप शिर्क तो नहीं करते, क्या आप वाकई मवाहिद हैं, क्या वो जो पहली दलील है जन्नत में जाने की ایمان اور اللہ پر ایمان کیسا کہ وہ ایک ہے اور اس کی صفات کے ساتھ اس کو ماننا، کیا آپ اس کو مانتی ہیں؟ تو میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں مانتی، سچ ہے؟ کوئی ایسا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے جو یہ سوچے کہ میں شرک کرتی ہوں. توحید یا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا اپوزٹ چیز کہہ لیں شرک. شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے اختیارات کو لے کے کسی دوسرے کو دینا. ٹھیک ہے، تو اس ٹاپک میں جو ہمارا 2-3 دن تک چلے گا، ہم دیکھیں گے توحید کی قسمیں، شرک کی. اور یہ اتنا اہم ٹاپک ہے، اس وقت آپ سب کے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کو کہہ دے، دنیا کی مثال دے دیتی ہوں، مثلا آپ اس شہر میں رہتے ہیں، ایک دم خبر آتی ہے، کوئی اعلان آتا ہے یا ٹی وی پہ یا کہیں، کہ ایک بہت مہلک یعنی بڑی ڈینجرس قسم کی بیماری پھیلی ہے اور اس کے جرمز اور اس کی یہ ہیں، تو آپ لوگوں میں سے جو یہ پریکاشنس لے لیں گے وہ تو سروائیو کر جائیں گے، ادروائز باقی سب چند دن کے اندر مر جائیں گے. ذرا سوچیے ایک لمحے کے لیے، اگر ایسی کوئی کال آئے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی، ہم کیا چاہیں گے، آپ بتائیے جی. اگر کوئی ایسی بات آ جائے کہ یہ چیز آپ کو سیکھنی اتنی لازم ہے کہ اگر آپ نے نہ سیکھا تو اس کے بعد بس آپ ایک ویک کے اندر فلاں بیماری کی وجہ سے مر جائیں گے، تو آپ کی کیا پرائیورٹی ہوگی؟ جی آپ بتائیے جی. پوری کوشش کریں گے سیکھنے کی، کیونکہ موت ہے. چلیں آپ اس کو چھوڑیں، یہ تو اپنی زندگی اور موت کی بات ہے. آپ کو جہاز میں بٹھاتے ہیں، آپ فرسٹ ٹائم ایروپلین میں بیٹھی ہیں، اور وہ آپ کو 5-6 منٹ کی ایک مووی دکھاتے ہیں یا کچھ پریکاشنس دیتے ہیں، سیفٹی ٹپس. کیا آپ اس ان چیزوں کو غور سے دیکھیں گی؟ جو ایک لیفلیٹ پڑا ہوتا ہے جہاز کی پاکٹ میں، سیٹ کی پاکٹ میں، اس کو دیکھیں گی؟ دیکھیں گی نا. کیوں دیکھیں گی، وجہ کیا اس کی؟ جی آپ میں سے کوئی بتائے، پیچھے سے آپ بتائیے جی. جی جان کا مسئلہ ہے بھائی، خدا نخواستہ جہاز کے اوپر نیچے کچھ ہو گیا تو مجھے پتا تو ہو میں نے نکلنا کہاں سے، میں نے کہاں سے بچنا ہے. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ لیں. اس طرح اور بہت سی مثالیں، آپ کھانا کھا رہی ہیں، کچھ کھانے کے لیے خریدنے جا رہی ہیں، آپ کو شیور نہیں ہے کہ جو چیز آپ لے رہی ہیں یہ پوائزنس ہے کہ نہیں ہے، اس میں زہر تو نہیں ملا ہوا، کیا فوراً کھا لیں گی؟ کوئی بھی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے آپ لے لیں گے؟ نہیں لیں گے نا. آپ اس کے لیے پہلے سے کانشیس ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان چیزوں کو لے لوں اور میری جان چلی جائے، صحت چلی جائے، مال چلا جائے. بالکل اسی طرح آپ لکھیں اپنے پاس، انسان کے پاس اس کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کہ کل اللہ اس سے راضی ہو اور اس کو جنت دے دے. ہم سب دنیا کے جو فائدے لیتے اور دیتے ہیں نا، ان سارے فائدوں میں ہماری سب سے بڑی پرائیورٹی کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اگر ہمارے اعمال میں شرک کی ہلکی سی بھی آمیزش ہو گئی نا، تو کل اللہ تعالی ہمیں نہیں معاف کرے گا. اس کے دلائل موجود ہیں. جس بندے کے اعمال میں ایک رتی برابر شرک آ گیا، اس کو اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا. اس کی دلیل موجود ہے، میں چند ریفرنس دوں گی، آپ لکھیں گے، بعد میں آپ اس کا ترجمہ نوٹ بھی کر سکیں تو کرنا چاہیں، کہ اگر کسی کے اعمال میں یا اس کی سوچ میں، اس کے ایکشنز میں، اس کے بولے ہوئے جملوں میں، اب میں اس وقت یہاں بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہمارے ہاں معروف و مقبول جو سانگز چلتے ہیں اس میں کئی مصرے ایسے میرے ذہن میں بھی موجود ہیں کہ جو سراسر شرک. ابھی چونکہ آپ نے یہ موضوع سنا نہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا ذہن نہیں کھلے گا، لیکن جب آپ یہ ٹاپک پورا سنیں گے تو آپ ان بولے ہوئے ڈائیلاگس کو جو فلموں میں اور موویز میں اور عام زندگی میں ہم اپنے پیاروں سے بولتے ہیں، تمہارے لیے تو یہ کر دوں، تمہارے لیے تو وہ کر دوں، اور دس اینڈ دیٹ، تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے تو لفظوں میں بھی شرک ہوتا ہے. ہم تو دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں اور یہ سوچ کے کہ دوسرے اس سے ہم سے خوش ہو جائیں. ہمیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کہیں کہ ذرا کسی کے سامنے ذرا اچھی پڑھ لو، اکیلے میں تو چل چلا لو، اس سے بھی شرک ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی. جی آپ جی یہ کہہ رہی ہیں کہ آج کل जी ये कह रही हैं कि आजकल नात के ज़रिए से भी शिर्क फैलता है। तो देखिए इस वक्त जो टॉपिक है ना, मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस पे बता रही हूँ कि आप और मैं इस वक्त कितना अहम मौजू सुनने वाले हैं। और जब तक हम किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं रखते, हम नहीं बचते। बस अगर हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ इलेक्ट्रिक वायर खुला हो तो हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि हमें इस बात का इल्म है कि इसको हाथ लगाना मेरी ज़िंदगी ले सकता है, मेरी जान निकल जाएगी। लेकिन इसके बरक्स एक छोटा बच्चा हो और उसको तो नहीं पता इलेक्ट्रिक ऐसी चीज़ है, वो चमकती हुई तार को उसको पकड़ना चाहेगा ना। आग जल रही हो, शोला हो, फ्लेम हो, हम उसको नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि हमें इल्म है कि ये शोला है, ये हमें जला देगा, मेरी उंगली जल जाएगी। लेकिन बच्चे को नहीं पता, वो उसको पकड़ना चाहेगा। ठीक है, तो जब बंदे को किसी चीज़ का इल्म हो जाता है ना, तो वो फिर उससे बचता है। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि शिर्क इतना बुरी चीज़ है कि जिसकी मौजूदगी में इंसान के अमल ज़ाया होते हैं। इसके लिए आप एक आयत जो पढ़ें, पढ़ सकती हैं जाके, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 91 है, जिसका खुलासा तर्जमा क्या है कि जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और कुफ्र की हालत में मरे, इनमें से कोई अगर अपने आप को सज़ा से बचाने के लिए रुए ज़मीन भर कर भी सोना फदिया में दे, तो इसे कबूल ना किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है और ऐसे लोगों के लिए कोई मददगार नहीं। बज़ाहिर दुनिया में हम लोगों की चैरिटीज़ और उनकी बहुत नेकी के कामों को देखकर ये सोचते हैं कि अब इनको भी जन्नत में जाना है, और हर एक जन्नत में जाएगा वो कोई भी अमल कर ले। ये एक अलग मौजू है जिसमें हम बात नहीं कर रहे, लेकिन तौहीद कितनी बड़ी नेमत है कि इसकी मौजूदगी में, इसकी मौजूदगी जन्नत में ले जाने का ज़रिया बनेगी, और जिसकी ज़िंदगी में शिर्क आ जाता है उसके अमल भी ज़ाया होंगे। कुरान पाक की एक आयत है, जिस सूरत अलानाम की आयत नंबर 88 है, अल्लाह ताला ने उसमें अम्बिया कराम की एक जमात, बड़े 10 से 12 पैगंबर हैं गालिबन, उनका नाम लेकर फरमाया, वलो अशरकू लहबित अनहुम मा कानू यामलून, कि अगर इन्होंने भी शिर्क किया तो इनके अमल ज़ाया हो जाएंगे। यानी इस हज़रत नूह ने जो 950 साल तक तबलीग की थी, वो सारी ज़ाया हो जाएगी अगर ये शिर्क कर लेंगे। यानी प्रॉफिट्स को अल्लाह ताला कह रहे हैं, तो मेरे और आपका क्या हाल होना चाहिए। तो लिहाजा हमें इस पे बहुत ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। कुछ आयतों के नंबर नोट कीजिए ताकि आप उसको बाद में अपने इस टॉपिक को मज़ीद समझने के लिए भी पढ़ सकें। सूरत अलानाम, सूरत ज़ुमर की आयत 65 को आप देखेंगे, उसमें शिर्क की बात है। सूरत शोरा आयत 213, फिर सूरत माईदा आयत 72, और सूरत निसा आयत 116, और सूरत तौबा 113। और अगर आप कुरान पाक की आयतों को जमा कर लेना, तो कुरान पाक की आयात में से अक्सर आयात, यानी एक बिग अमाउंट, यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ लोगों को तौहीद सिखाता है। जी मैं दोबारा बोल देती हूँ, आप लोग लिखे, जो रह जाए अपने साथ वाले को तंग ना करें, ठीक है, कोई खुसर खुसर ना करें, छूट जाए उसकी जगह छोड़ दें, ठीक है। आज पहला दिन है, आपको टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। कुछ चीज़ें ना समझ आए तो ये सोच लें कि जो समझ आ गया वो भी तो है ना। तो इंशाल्लाह बाद में और ग्रुपिंग में आप लोग अपने ग्रुप लीडर्स के साथ, आपकी वो हेल्प करके आप लोग इसको मेकअप करेंगे। मैं आयतों के नंबर दोबारा बोल देती हूँ, और ये तो सिर्फ चंद आयतें हैं ना, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स आयतें हैं जो तौहीद सिखाती हैं। मक्का के 13 साल तक 3 सब्जेक्ट पढ़ाए गए थे, तौहीद यानी जिसमें अल्लाह को एक मानने की बात थी, दूसरा था आखिरत, हेयर आफ्टर यानी मरने के बाद क्या होगा, जन्नत और जहन्नम, और तीसरा था रिसाला, रिसालत, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना। तो हमारे इस सिराते मुस्तकीम कोर्स की भी यही तरतीब है। इंशाल्लाह जो ब्रेक के बाद आपका आखिरी सब्जेक्ट होगा जिसमें हम सी तफसीर देखेंगे, तो उसमें हम इसी तरतीब से चलेंगे ताकि हमें पता चले कि सबसे बेसिक क्या है। मिसाल है कि अगर आपको कोई कहता है कि जी आप नेल पॉलिश लगा के नमाज ना पढ़ें, तो ये सेकेंडरी इशू है। उससे पहला इशू क्या है कि आप अल्लाह को एक मानती हैं कि नहीं। तो शिर्क की अमेज़िश जो है वो इंसान के अमाल को ज़ाया कर देती है। सूरत आले इमरान की आयत 91, सूरत अनाम आयत 88, सूरत ज़ुमर 65, सूरत शोरा आयत 213, सूरत माईदा आयत 72, सूरत निसा 116, सूरत तौबा 113, ये चीज़ें आप अपने रेफरेंस के लिए नोट करेंगे, कल की ग्रुपिंग में आप लोग इस पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर बहुत सारी अहादीस भी हैं, दो तीन अहादीस आपके सामने रख के फिर इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन पे चलूँगी। पहली रिवायत जो है ये मुस्नद अहमद की है, हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको 10 नसीहतें की, 10 इंस्ट्रक्शंस दी कि क्या काम तुम्हें करने हैं। तो पहली चीज़ जो थी वो क्या थी, ला तुशरिक बिल्लाही शैयन वाइन को दिलता और रिक्ता, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, अगरचे तुम कत्ल कर दिए जाओ या जला दिए जाओ। यानी इतना भी कोई जुल्म करे कि अगर देखो तुम अल्लाह के साथ किसी एक कौर को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, फिर भी इजाज़त नहीं है इसकी कि शिर्क किया जाए। और इसके बाद आगे तो आप देख सकते हैं कि क्या कोई जला दे, कोई कटा दे, क्योंकि जब लोग अल्लाह के एक बनना अल्लाह की तरफ आना चाहते हैं ना, तो उसके नतीजे में जुल्म की हद हो जाती है। लोग उसको पसंद ही नहीं करते कि लोग वाकई एक अल्लाह के बन जाएं और उसके साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ें। फिर इसी तरह से ही मुस्लिम की एक रिवायत है, आपने फरमाया कि 7 यानी 7 हलाक करने वाली चीज़ों से डरो, यानी वो चीज़ें जो इंसान की डिस्ट्रक्शन का बायस बनेंगी। और उसमें आपने पूछा पहली चीज़ लोगों ने क्या पूछा क्या, तो आपने फरमाया कि अल्लाह के साथ शिरक ना करना। ये छोटी चीज़ नहीं है, हम बड़े आराम से कहते हैं इट्स ओके, शी इज़ माई फ्रेंड, नो प्रॉब्लम, इफ़ शी सेज देर इज़ 2-3 गॉड्स नो प्रॉब्लम, माइंड योर बिजनेस, डोंट टॉक अबाउट रिलीजन। ये जुमले कब बोलता है इंसान, जब उसको खुद नहीं पता होता कि असल इस्लाम दीन है क्या। तो लिहाजा शिर्क इंसान के लिए हलाकत का सबब है। और एक तो बड़ी खूबसूरत रिवायत है मुस्तद अहमद की, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस वक्त तक अपने और बंदे के गुनाहों को माफ़ करता रहता है जब तक बंदे और रब के बीच में हिजाब ना हो। 8-9 तो सहाबा किराम ने पूछा कि हिजाब का क्या मतलब है, बैरियर, रुकावट, पर्दा क्या है। तो फरमाया कि हिजाब क्या है कि इंसान मरते दम तक शिर्क में मुब्तला रहे। यानी जो मुशरिक होता है ना, जो शिर्क करता है, उसके और अल्लाह के बीच में एक बैरियर आ जाता है, और बैरियर आ गया तो फिर अल्लाह ताला उससे अपने ज़िम्मे को उठा लेता है। और शिर्क की मौजूदगी वाकई इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हलाकतों का सबब होगी। दो शख्सियात का जिक्र आपके सामने करूंगी, एक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले, बाप बन के पालने वाले, इस्लाम के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी कि 3 साल तक एक घाटी में बंद रहे। इंशाल्लाह सीरा क्लास में आप ये भी सीखेंगी कि वो कैसा मुश्किल दौर था, लेकिन शिर्क था। अल्लाह को तो मानते थे लेकिन उसके साथ दूसरों को भी मानते थे, और इसी पर उनका इंतकाल हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरते दम पे उनके डेथ बेड पे आपने कहा कि चचा एक दफ़ा कलमा पढ़ लें, अल्लाह को एक मान लें, तो मैं आपके लिए अल्लाह से सिफारिश कर दूंगा। लेकिन आखिरी जुमले जो उनके दीन ज़ुबान से निकले वो क्या थे कि मैं अपने बाप दादा के दीन पे हूँ। क्योंकि हमेशा शिर्क की तरफ जाने से रोकने वाली चीज़ें इंसान का इस तरह का यानी नस्बतें होती हैं, मोहब्बतें होती हैं। तो आपने फरमाया कि जहन्नुम में सबसे हल्का अजाब जिस शख्स को होगा उसको कैसे होगा कि उसके पाँव में आग के 2 जूते पहनाए जाएंगे और उसकी गर्मी की वजह से उसका दिमाग हंडिया की तरह खौलेगा और वो शख्स अबू तालिब होंगे। अल्लाह अकबर, सारी ज़िंदगी की नेकियां ज़ाया हो गईं क्योंकि अल्लाह के साथ शिर्क था। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद, हज़रत इब्राहीम वो खुशकिस्मत इंसान है कि इस वक्त भी दुनिया के सारे मज़ाहब जो इल्हामी मज़ाहब हैं वो अपना ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम से जोड़ते हैं, लेकिन उनके बाप भी जहन्नुम में जाने का हुक्म आता है कि वो शिर्क पे थे, बुत परस्त थे, आइडल वर्शिपर थे। और हज़रत इब्राहीम की नेकियाँ भी उनको फ़ायदा नहीं देंगी, उनकी दुआएँ भी फ़ायदा नहीं देंगी।